नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, 45 दिन या उससे अधिक की संविदाधारित नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी महीने में होगी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखा। आवासीय ऋण, वाहन ऋण और अन्य ऋणों पर ईएमआई में नहीं होगा कोई परिवर्तन। और एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य समेत 95 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की संविदा आधारित नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि 45 दिन या इससे अधिक की संविदा आधारित नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। केंद्र की ओर से बताया गया कि सभी मंत्रालय और विभागों को आरक्षण का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने जातीय गणना पर रोक संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार को नीति बनाने या काम करने से नहीं रोका जा सकता है। न्यायालय सिर्फ नीतियों की समीक्षा कर सकती है। अब इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी महीने में होगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। श्री ईमान ने कहा कि आंकड़ों में मुसलमानों की आबादी कम कर दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कलाल इराकी को हिंदू बताया गया है, जबकि वे मुस्लिम धर्म को मानते हैं।
सरकार के तौर पर से ये जारी किया गया है जनगणना आर्थिक गणना की कॉपी। इसमें कॉलम नंबर 122 में कलाल इराकी बिरादरी, जो मुसलमानों की उपजाति है, उसको गैर मुस्लिम माने हिंदू बिरादरी में उसको शामिल गिना गया है। और मेरा दावा यह है कि उसकी आबादी भी लगभग इतनी है कि अगर उसकी आबादी को जोड़ दिया जाए तो बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 19%।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है।
It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility that is MSF rate and bank rate at 6.7%.
रेपो दर में बदलाव नहीं होने से आवासीय ऋण, वाहन ऋण और अन्य ऋणों पर ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 2 साल में देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौत की घटनाएं पिछले 4 दशकों में सबसे कम देखी गई। वहीं वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में नक्सली घटनाओं में 77% की कमी आई है। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी नीतियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों से वामपंथी हिंसा में कमी आई है। बैठक में बिहार से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हुए। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि इस मामले में अलग अलग जिले में कुल 74 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता कदाचार के संबंध में जो विभिन्न मामलों में FIR दर्ज की है, वो FIR को अब आर्थिक अपराध इकाई टेक ओवर कर रहा है। कुल अभी तक 74 FIR दर्ज हुई है और आज तक लगभग 150 लोगों की इस मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है।
भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में हाथ में पिस्टल लेकर चलने के आरोप में जदयू विधायक गोपाल मंडल से जिलाधिकारी ने जवाब तलब किया है। विधायक द्वारा नोटिस का जवाब देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपाल मंडल का वीडियो वायरल होने पर जिलाधिकारी ने इस मामले की पुलिस अधीक्षक से जाँच करवाई थी। BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के सभी शिक्षक संघों ने आज काम का बहिष्कार किया। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज होने वाली सभी परीक्षाओं और मूल्यांकन कार्यों को भी स्थगित कर दिया था। कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, रजिस्ट्रार संजय कुमार, वित्तीय सलाहकार जयप्रकाश शर्मा और वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की प्राथमिकी दर्ज होने के कारण शिक्षक संघों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की सुनवाई जल्द करने के लिए पटना व्यवहार न्यायालय में एक विशेष अदालत का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के परामर्श के बाद विशेष अदालत का गठन किया है। इसका क्षेत्र पूरा बिहार होगा। इस विशेष ATS कोर्ट में आतंकवाद निरोधी दस्ता के थानों में दर्ज होने वाले सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले इन मामलों की सुनवाई विभिन्न जिलों की अदालतों में सामान्य कांडों की तरह ही होती थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पटना पर सुने जा सकते हैं। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय हॉकी टीम ने आज फाइनल मुकाबले में जापान को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने आज 9 मेडल अपने नाम किए। भारत 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य पदक समेत कुल 95 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
भारत की पुरुष टीम ने हॉकी में 9 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने जापान को 5-1 से पराजित किया। तीरंदाजी में भारतीय रिकर्व महिला टीम ने कांस्य पदक के प्लेऑफ मैच में वियतनाम को 6-2 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि पुरुष टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ रजत पदक जीता। रेगु सेमीफाइनल में थाईलैंड से हारने के बाद भारत की महिला टीम ने सेप कटाफ्रा में कांस्य पदक जीता। कुश्ती में सोनम ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वर्ग में चीन की लॉन्ग जिया को 7-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। किरण विश्नोई ने महिलाओं के फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया की अरियुंज रगल गणबत को 6-3 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। बैडमिंटन में HS प्रणय को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कबड्डी में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं बैडमिंटन सुपरस्टार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज पुरुष युगल सेमीफाइनल में भारत की कमान संभालेंगे। भारतीय जोड़ी ने कल पुरुष युगल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी शानदार जीत के साथ भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
प्रदेश में आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार को बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया। ITS प्रौद्योगिकी के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि देश के नागरिकों और समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता पर सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि परीक्षण अवधि के दौरान लोगों को मोबाइल उपकरणों पर बनावटी आपातकालीन अलर्ट प्राप्त हुए। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक है जो एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर आपदा प्रबंधन के लिए संदेश भेजने की अनुमति देता है। राज्य में मॉनसून के लौटने की अनुकूल स्थितियां बनने लगी हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की परिस्थितियां पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
इधर मौसम साफ होने के बाद मधुबनी जिले के विभिन्न हिस्सों से हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्पष्ट देखी गई। बारिश में कमी आने के चलते कैमूर जिले से गुजरने वाली पहाड़ी नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। इससे बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कैमूर में सुवरा दुर्गावती और करमनासा नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट आई है। भगवानपुर, रामपुर और मोहनिया प्रखंड के निचले इलाकों से पानी तेजी से निकलने लगा है। दुर्गावती जलाशय परियोजना का जल स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा है। क्षतिग्रस्त सड़कों और नहरों के तटबंधों की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि 1-2 दिनों में स्थिति पूर्व की तरह सामान्य हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग फसलों को हुई क्षति का आकलन रहा है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए भभुआ से श्रीकांत पांडे।
राज्य में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 344 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 179 नए मामले मिले हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई है। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला देशभर में पहले स्थान पर रहा है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग में जिले को 6वां स्थान मिला है। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा है कि नियोजन मेला के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 69,000 से अधिक कामगारों और युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दी गई। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष नियोजन मेला आयोजित कर रही है। इन मेलों के माध्यम से 1,00,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर नूर स्थित सूर्यदेव सिंह महाविद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी की, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य और गार्ड घायल हो गए। शिवहर जिला आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया जिले के कुख्यात अपराधी संतोष मांझी को पुलिस ने पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, 45 दिन या उससे अधिक की संविदा आधारित नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी महीने में होगी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखा। आवासीय ऋण, वाहन ऋण और अन्य ऋणों पर ईएमआई में नहीं होगा कोई परिवर्तन। और एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य समेत 95 पदकों के साथ पदक तालिका में 4वें स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।